अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने जल्दी से नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं राजा साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वो अपने हाथ की दो उंगलियों को अरुणिमा की गर्दन पर फिराते हुए कहता है, ठीक है, कर लिया यकीन, मान लिया तुम जो कह रही हो वही सच है। अरुणिमा आस्तिक के छूने से घबरा रही थी। उसका पूरा शरीर इस समय 440 वोल्ट के झटके महसूस कर रहा था। वो जल्दी से अपने शरीर को इधर उधर करते हुए आस्तिक के छूने का विरोध करने लगी। आस्तिक ने जब अरुणिमा को ऐसा करता पाया तो उसका चेहरा गुस्से में भर गया और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अरुणिमा के ब्लाउज को पकड़ा और एक झटके में उसे फाड़ दिया। अरुणिमा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने सीने को ढका। उसकी रोने की आवाज़ तेज हो गई थी और वो रोते हुए आस्तिक को देख रही थी, या यूं कहें उसे छोड़ने के लिए दुहाई मांग रही थी। पर आस्तिक ने अपने दूसरे हाथ से अरुणिमा की गालों को दबोचते हुए कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ अगर कोई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो। अरुणिमा के होठों को छोड़ आस्तिक उसके गालों पर और गर्दन पर गहरे निशान बनाने लगा और अरुणिमा की वो तड़पती हुई आवाज़ उसके कानों को सुकून दे रही थी। आस्तिक अरुणिमा के ऊपर से उठता है और अपने शेरवानी के बटन खोलते हुए अरुणिमा को देखने लगता है। अरुणिमा किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके सामने बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन आस्तिक के दिमाग में इस समय सिर्फ वही तस्वीर थी जो उसे विशाल ने दिखाई थी। उसने गुस्से में अपनी शेरवानी उतारते हुए अरुणिमा को देखकर मन में कहा, भले ही मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आखिरी मैं ही रहूँगा। अरुणिमा की चीख इतनी दर्द भरी थी कि कोई उन्हें सुन लेता तो उसके दिल में भी आस्तिक के लिए नफरत और अरुणिमा के लिए दया भाव पैदा हो जाते। लेकिन अफसोस, आस्तिक का कमरा साउंड प्रूफ था और अरुणिमा की वो दर्दनाक चीखें उस कमरे में ही दबकर रह गई थीं। ये कहीं से भी सुहागरात पर जताए जाने वाला प्यार नहीं था, बल्कि आस्तिक के दिल में पनप रही अरुणिमा के लिए नफरत थी जो वो अरुणिमा के ऊपर निकाल रहा था। सुबह के करीब 4 बजे आस्तिक ने अरुणिमा को छोड़ा जो जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस ले रही थी, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। आस्तिक बेड से खड़ा होता है और अपने कमर पर एक टावल को लपेटता है। आस्तिक के हाथों में एक ब्रेसलेट था जो उसे प्रणाली ने गिफ्ट किया था। अब वो ब्रेसलेट उसके हाथों में नहीं था। ये देखकर आस्तिक हैरानी से कहता है, मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? कहीं बेड पर तो नहीं है? आस्तिक वापस बेड के पास आता है और अरुणिमा के ऊपर जो चादर थी उसे खींचकर हटा देता है। वो पूरे बेड पर ब्रेसलेट देखने लगता है। उसे उसका ब्रेसलेट तकिए के किनारे पर मिल गया था, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चादर पर वो लाल खून के निशान आस्तिक को हैरान कर रहे थे। उसने अरुणिमा को देखा जिसके शरीर में जान नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी खुली हुई आंखों से एकटक सीलिंग को देख रही थी और सांस ले रही थी। अरुणिमा के कानों में आस्तिक की आवाज़ तो जा रही थी, लेकिन जैसे उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चेहरा घुमा के आस्तिक को देख सके या उससे कुछ कह सके। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद अरुणिमा ने नहीं की थी। आस्तिक अपनी जगह से उठकर बेड से खड़ा होता है और अरुणिमा की तरफ आता है। वो अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बेड से नीचे गिरा देता है। अरुणिमा हैरान हो जाती है और आस्तिक को देखने लगती है, लेकिन आस्तिक ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने हाथों में ब्रेसलेट पहनते हुए कहा, अपने कपड़े मेरे बेड से हटाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ एक बिस्तर पर सो सको। अरुणिमा के शरीर पर बस एक पतली सी ब्लैंकेट थी और वो उससे अपने शरीर को ढलते हुए हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। आस्तिक ने क्या कहा कि वो उसके साथ एक बिस्तर पर सोने के लायक नहीं है? आस्तिक वहां से सीधे बाथरूम चला गया और अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को जाता हुआ देखती रह जाती है। अब उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, इतनी देर रोने से उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसकी मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो बस ये पूछना चाहती थी कि अगर आस्तिक उसे इतनी नफरत करता है तो फिर उसने अरुणिमा से शादी क्यों की? 10 मिनट बाद आस्तिक बाथरूम पहनकर वापस कमरे में आता है। अरुणिमा अभी भी वैसे ही फर्श पर बैठी हुई थी और हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक वहां से सीधे क्लोजेट की तरफ जाने के लिए मुड़ता है। तभी अरुणिमा आस्तिक को देखकर कहती है, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आस्तिक के कदम रुक जाते हैं, पर वो अरुणिमा की तरह बिना पलटे ही उसे कहता है, अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब देने का मेरा मूड नहीं है। अरुणिमा ने हताशा के साथ कहा, मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, आप इस तरीके से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। आस्तिक का चेहरा सख्त हो गया। वो अरुणिमा की तरफ पड़ता है और अचानक से झुककर अरुणिमा के बालों को अपनी मुट्ठियों में कस लेता है। अरुणिमा के मुंह से एक चीख निकलती है और वो आस्तिक को बेबसी से देखने लगती है। आस्तिक सख्त नजरों से अरुणिमा को घूरता है और वो उससे कहता है, बेइज्जती, तुम्हें पता भी नहीं कि असली बेइज्जती होती क्या है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ रहकर तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। और क्या कहा तुमने, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है? एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो जो सिर्फ मेरे इशारे पर नाचेगी, और अगर तुमने यहाँ से जाने का ख्याल भी अपने मन में लाया ना तो मैं तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ पर तुम चाह के भी उन्हें नहीं ढूंढ पाओगी। अपने परिवार का जिक्र सुनते ही अरुणिमा का चेहरा डर से भर जाता है और आस्तिक को अरुणिमा का चेहरे पर यही डर तो पसंद था। उसने एक झटके से अरुणिमा को छोड़ दिया और सीधे क्लोजेट की तरफ चला गया। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की बातों को सुनती रह गई। उसका दिल बुरी तरह से छलनी हो गया था। उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो जोर जोर से रोना चाहती थी। अरुणिमा वैसे ही बेड के किनारे पर अपना सर टिकाकर अपनी बुरी किस्मत के बारे में सोच रही थी। 5 मिनट ही हुए थे कि आस्तिक सिंपल ट्राउजर और टी शर्ट में क्लोजेट से बाहर आता है।